नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, यदि संसार के समस्त लोगों को एक राउंड टेबल में बिठा दिया जाए और सबसे कहा जाए कि सब अपनी अपनी समस्याओं को टेबल पर रख दें और उसके पश्चात ये कहा जाए कि आप किसी की भी समस्या को ले सकते हैं और अपनी समस्या को दूसरे के लिए छोड़ सकते हैं, तो आप पाएंगे कि गहरे सन्नाटे के बाद हर एक अपनी अपनी समस्या लेकर वापस उठ जाएगा, क्योंकि सभी के पास कोई ना कोई समस्या है और हमारे पास जो समस्या है उससे कहीं विकराल समस्या सामने वाले व्यक्ति के पास है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि शायद मैं ही परेशानियों से जूझ रहा हूं, मैं ही समस्याओं से जूझ रहा हूं, इसलिए हम कहीं ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर गीत लिखा है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। इसलिए केवल अपने गम, अपनी समस्या से ही ना जूझते रहें, संसार के दूसरे लोगों के गमों की ओर भी देखें कि वो कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप पाएंगे कि शायद आपकी समस्या बहुत छोटी है, बहुत हल्की है और उसे दूर करने का साहस, हिम्मत आपके पास आ जाएगा। यही चर्चा हम भ्राता जी के साथ कर रहे हैं। आइए पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
थैंक यू
राता जी। ये जो एक दृष्टिकोण है कि किस प्रकार से हम दूसरे की भी समस्या को देख करके मदद करें या समाधान करें, तो कई बार ये होता है कि हम अपने में ही उलझे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत भारी पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा है। क्या हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि दूसरे जो समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए ताकि वो समस्याओं से मुक्त हो तो उसका बल मुझे भी थोड़ा मिले?
बिल्कुल सत्य है कि यदि मनुष्य इस तरह के परोपकार में लग जाए तो वो अपनी समस्याओं को तो भूल ही जाएगा, और जब वो भूल जाएगा तो उसकी समस्याएं भी उसे भूल जाएंगी।
बिल्कुल,
एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल सिद्धांत है, उसको हम अप्लाई करेंगे। अगर स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। स्व स्थिति माना हमारे मन का मूड, हमारे मन की स्टेट, स्टेट ऑफ माइंड यदि बहुत एलिवेटेड है, बहुत ऊंची है, हाई है, तो जैसे हम जब एरोप्लेन में चलते हैं, ऊपर जाते हैं तो नीचे की चीजें छोटी लगने लगती है ना। कभी कभी रात का समय होता है, नीचे हाईवे पे गाड़ियां चलती हैं तो केवल लाइट लाइट दिखती है कि कुछ जा रहा है, कीड़ी जैसी कोई चीज, चींटी जैसी चल रही है। तो हम अपने मानसिक लेवल को इतना ऊंचा उठा दें कि हर बात हमें छोटी लगने लगे
जी,
तो वास्तव में कोई परिस्थिति हमारे पास रहेगी ही नहीं।
भ्राता जी, आपने जो कहा बहुत सुंदर बात है, यदि व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को बहुत ऊंचा कर ले, महान कर ले, हर एक चीज के लिए बहुत पॉजिटिव रवैया अपनाए तो सचमुच समस्याएं बहुत छोटी छोटी लगेंगी, और जो चीज छोटी होती है वो खेल की तरह हो जाती है। एक छोटी सी चींटी को नष्ट करना किसी हाथी के लिए बहुत सामान्य सी बात है, तो वैसी हमारी भी स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी तो समस्याएं चींटी बनकर के समाप्त हो जाएंगी।
हम सभी को यही मान लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि हम बहुत बड़े हैं, हमारी मनोस्थिति का महत्व तो बहुत बड़ा है, उसकी शक्तियां, उसका प्रभाव बहुत बड़ा है, उसके वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हैं, और ये परिस्थितियां बहुत छोटी हैं। परिस्थितियां कमजोर मन की रचना है और स्वस्थिति एक पावरफुल माइंड की रचना है, तो कमजोर मन की रचना तो कमजोर ही होती है ना। हम उन्हें माने ही ऐसा कि दे आर नथिंग, आई हैं जाएंगी, ये तो खेल चल रहा है,
जैसे बादल आते हैं बरसात के दिनों में और चले जाते हैं, वैसे ही समस्याएं आई हैं और चली जाएंगी, मैं इसे सही अप्रोच रखूं इनके प्रति और सहज रूप से इनसे पार हो जाऊं, ये दृष्टिकोण रहता है तो हम उसे खेल की तरह एंजॉय भी करते हैं।
बिल्कुल, जैसे आपने बादलों की बात कही तो मैं एक और सुंदर चीज अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं कि देखिए, कभी कभी संसार में बहुतों के साथ, किसी किसी के साथ क्या, पर बहुतों के साथ ही होता है कि सत्य बात सुनी नहीं जाती, असत्य का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, झूठ को साथ देने वाले हजारों लोग होते हैं, सत्य अकेला पड़ जाता है, तब जो सत्य में रहने वाला व्यक्ति है वो बड़ा निराश होता है कि मैं अकेला हो गया, अब क्या होगा मेरा, इनके साथ तो बड़े पावरफुल लोग हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल सिद्धांत, मैं बीच बीच में ये जो स्पिरिचुअल सिद्धांत है उनकी चर्चा अवश्य करूंगा ताकि एक सत्य ज्ञान का प्रकाश सभी तक पहुंचता रहे, और वो सिद्धांत ये है कि सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते। इसलिए कभी कभी जो सत्य निराश हो जाता है, इस निराशा को हम समाप्त करें। सत्य में बहुत पावर है, सत्य का सूर्य तो चमकेगा ही। जैसे देखिए, दिन हो और चाहे सूरज के आगे कितने भी घने बादल क्यों ना आ जाएं, लेकिन रात नहीं होती है, उसका प्रकाश फिर भी दिखाई देता रहता है। तो अपनी सत्यता में विश्वास रखें और असत्य को प्रबल होते देखकर अपने आत्मविश्वास को डगमगाएंगे नहीं तो परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी।
बिल्कुल, अपने सत्य पर भी विश्वास रखें और साथ ही उस सर्वशक्तिवान परमात्मा पर भी विश्वास रखें, क्योंकि वो भी तो सत्य के सागर हैं, वो भी सत्य का साथ देते हैं, तो उनकी भी शक्ति हमें मदद करेगी और जल्दी से जल्दी हम अपनी परिस्थितियों से उभर जाएंगे।
बिल्कुल, उन्होंने खुद कहा है, मैं उधर ही हूँ जिधर सत्य है। जैसे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा ये बात बार बार कही गई है। लोग उससे पूछते हैं, तुम किधर जाओगे, तुम इधर जाओगे या इधर जाओगे, तो वो कहते हैं, जिधर धर्म है उधर ही मैं हूँ। तो भगवान के भी यही महावाक्य हैं, जिधर धर्म है, जिधर सत्यता है, जिधर पवित्रता है, उधर ही मेरा साथ है। तो जिसे भगवान साथ देता हो, परिस्थितियां या झूठे लोग उसका क्या करेंगे, थोड़ा बहुत उसे कष्ट दे सकते हैं, उसे विवश कर सकते हैं, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए असत्यता का प्रभाव सत्य को विवश भले ही कर दे कुछ समय के लिए, छुपा भले ही दे कुछ समय के लिए, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर सकता।
बिल्कुल, तो इस सत्य पर विश्वास अवश्य रखें, परमात्मा की शक्ति पर, स्वयं की शक्ति पर विश्वास रखें। लेकिन जो प्रश्न आज भी हमारे पास आए हैं भ्राता जी, वो इसी प्रकार के हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ा मन में अपने कह लें कि निराशा के भाव, या कह लें कि थोड़ा सा दुख के भाव लिए हुए हैं, और आपने जैसे कहा कि थोड़ा विश्वास को अपने कायम रखें अपने अंदर, तो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। तो भ्राता जी, मैं पहला प्रश्न ले रहा हूँ, ये हमारे पास आया है हिमाचल प्रदेश से, और कैलाश पंत जी लिख रहे हैं कि मेरे भाई ने बिजनेस में मुझे धोखा दिया और मेरे लिए काफी उल्टा सीधा प्रचारित भी किया। उसके धोखे से मैं बहुत टूट गया हूँ और बहुत दुखी रहने लगा हूँ। मैंने एक बार तो मरने की कोशिश भी की लेकिन बच गया। अब भी मैं इस सदमे से उबर नहीं पाया हूँ, मैं क्या करूँ? जब अपना कोई भ्राता जी इस प्रकार धोखा दे जाता है, जिसपे हमने बहुत विश्वास किया है, तो सचमुच एक टूटने की स्थिति तो आ जाती है।
इन्होंने उसको साथ भी बहुत दिया होगा, सहयोग भी बहुत दिया
और
होगा,
अपनी पूरी एनर्जी ही लगाई ना उन्होंने।
और ऐसे व्यक्ति से जब धोखा मिलता है तो निश्चित रूप से मनुष्य टूटता है और वो मरने की सोचता है। लेकिन मैंने कहूंगा कि जीवन बहुत मूल्यवान है। ये धोखा देना, ये धन का चले जाना, ये सब तो विनाशी है। आज है कल नहीं है, आज कोई मित्र है कल शत्रु बन जाते हैं, कोई शत्रु है आज मित्र बन जाता है, ये खेल तो चल रहा है। लेकिन कभी भी अपने जीवन को नष्ट करने की नहीं सोचनी चाहिए, जीवन बहुत मूल्यवान है। मुझे कहानी याद आ गई, सच्ची घटना है। बहुत साल पहले हमारे यहाँ नैरोबी, केनिया की राजधानी नैरोबी है अफ्रीका की, तो वहाँ का एक बहुत रिच व्यक्ति बॉम्बे में हमारे प्रोग्राम में आया और उसको ज्ञान बहुत अच्छा लगा। उसने राजयोग सीखा और केनिया में हमारा सेंटर खोलने के लिए निमंत्रण दिया। अचानक क्या हुआ, 6-8 मास ही हुए थे, बहुत बड़ा बिजनेस था उसका, 47 कंट्रीज में दिवाला हो गया। दिवाला हो गया तो सब कुछ चला गया, मकान एक बचा उसके पास, वो अपने बगीचे में घूम रहा था। उसका फ्रेंड उससे मिलने आया, सांत्वना दी और बातचीत होने लगी, तो बहुत भाई बहुत बुरा हो गया और आपका इतना सब कुछ नष्ट हो गया,
सहानुभूति जताने लगे,
हम आपके साथ हैं, कोई मदद चाहिए, अभी तो ऐसे विकट परिस्थितियों में ही मनुष्य को मदद की जरूरत पड़ती है। वो सोचता रहा। उसने एक बहुत सुंदर बात कही फिर कि देखो, जब मैं भारत से अफ्रीका में आया था तो मैं एक अटैची और बैग लेकर आया था, मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने एक छोटी सी नौकरी की थी और केवल 30 साल में मैं एक बहुत बड़े बिजनेस का मालिक बन गया था। मैंने बिजनेस क्रिएट किया था ना, मैं क्रिएटर हूं। चलो बिजनेस नष्ट हो गया, पैसा चला गया, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। तो जब क्रिएटर जिंदा है तो मैं फिर क्रिएट कर लूंगा, मैंने क्रिएट किया था और टैलेंट्स मेरे पास हैं, तो मुझे भी बहुत आनंद है। और तब से बात बहुत साल पहले की है, शायद 32 साल हो गए हों, मैंने भी सीखा, वी आर क्रिएटर हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए, हमें अपने को नष्ट करने की कभी नहीं सोचनी चाहिए।
हमारा आत्मविश्वास, हमारा हिम्मत यदि डगमगा जाए तब तो हम नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो तो कायम है। और साथ ही हमारा जो विजन, हमारी जो क्षमता, हमारी योग्यता है वो तो कायम है, हम फिर क्रिएट कर सकते हैं।
और सबने देखा उसको कि 5-7 साल में उसने सब कुछ एस्टेब्लिश कर लिया और फिर वो उसी पोजिशन पर था। तो मैं भाई साहब को कहूँ मरने की कभी ना सोचें, और ये बुरे दिन इनके जीवन में आए हैं। और सबसे बुरी बात ये होती है कि जब अपना व्यक्ति कोई गलत प्रचार कर दे, धोखा उसने दिया लेकिन कहे ये रहा है, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे इतने पैसे मार लिए, इसने मेरा ये नहीं दिया। तो ऐसे में वही बात जो हम पहले कर रहे थे, आपको तो पता है ना सत्य आपके पास है, अपने सत्य में विश्वास रखें और बाहरी इन चीजों से, दूसरों के द्वारा फैलाए गए गलत प्रचार से अपने को निराश न करें, मूर्छित न करें, अपनी खुशी को नष्ट न करें। देखिए संसार ही ऐसा है, ये कलयुग का अंत है और इसमें वो व्यक्ति जो बहुत गलत है, वो व्यक्ति जो पाप कर रहा है, वो व्यक्ति जो धोखा दे रहा है, अपने को बचाने के लिए, अपने को सत सिद्ध करने के लिए उल्टा सुलटी बातें तो करेगा ही। इसलिए इससे प्रभावित न होके वैसे ही सोचें जैसे बहुत सारी बदबू हो और हम एक अगरबत्ती जला देते हैं। अगरबत्ती ये तो नहीं सोचती ना बदबू बहुत है, नहीं, वो तो अपनी सुगंध फैलाएगी। तो आप उसके कमेंट्स से, उसके द्वारा झूठे प्रचार से अपने मन को दुखी न करें, लेकिन अपनी सत्यता में स्थित हो जाएं, अपने मन में सुंदर अभ्यास करें, राजयोग सीख लें। राजयोग हमें सदा प्रसन्न रहने की कला भी सिखाता है। राजयोग का एक ये भी विधान है कि वो हमारे मन में सुंदर विचारों को क्रिएट करने की कला प्रदान करता है। तो आप सुंदर विचार क्रिएट करें और आपके विचारों के वाइब्रेशंस, आपकी सत्यता के वाइब्रेशंस इस असत्य वाइब्रेशंस को नष्ट कर देंगे। हमें ये जानना चाहिए कि निगेटिव एनर्जी चाहे 100 विचारों के द्वारा क्रिएट की गई हो, लेकिन एक पॉजिटिव विचार में उनको नष्ट करने की शक्ति होती है। पॉजिटिव विचार इज मोस्ट पावरफुल, पॉजिटिव थॉट इज मोस्ट पावरफुल थॉट, एंड नेगेटिव वाइब्रेशंस आर ऑलवेज वीक।
बिल्कुल।
तो अपने में विश्वास करें और इस दुविधा से, इस निराशा से बाहर आ जाएं। वो क्या कह रहा है ये न सोच के अब फिर से आप स्टैंड हो जाएं और संसार को दिखा दें कि कोई व्यक्ति धोखा देकर हमें बिगाड़ नहीं सकता, हमारे भाग्य को नहीं छीन सकता। भगवान हमारे साथ है, भाग्य हमारे साथ है, हम फिर से उससे भी आगे हैं।
बिल्कुल। तो अपने मन में निराशा ना आने दें और बल्कि वहीं से शुरुआत करें। और यदि संभव होता है तो भ्राता जी एक चीज और यदि हम बात करें तो क्या इन्हें कानूनी सलाह भी लेनी चाहिए या कानून की शरण में भी जाना चाहिए?
ले लेनी तो चाहिए, पर आजकल कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है और उसमें मनुष्य को टेंशन इतना ज्यादा हो जाता है और आजकल लेन देन इतना चलता है कि जिसके पास पैसा है बस न्याय उसी की तरफ है। इसलिए उससे अच्छा है कि इस चीज को एक तरफ रखकर फिर से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए और अपनी हाईएस्ट पोजीशन को प्राप्त करें।
बिल्कुल। इनके पास योग्यता तो है, क्षमता तो है, ईश्वर का साथ है, उनका आत्मविश्वास है। तो जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था वैसे ही ये भी जर्रे से भले शुरुआत करें लेकिन शिखर पर अवश्य पहुंचेंगे क्योंकि परमात्मा की शक्ति, सत्य की शक्ति इनके साथ है। भ्राता जी अगला मैं मेल ले रहा हूँ, ये आया हमारे पास भवानी पटना उड़ीसा से। सत्रुपा मोहंती जी लिख रही हैं, कहती हैं कि मैं और मेरे पति दोनों बहुत क्रोधी हैं, कभी कभी हमारी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि पड़ोसियों को आकर छुड़ाना पड़ता है, मैं अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित करूं? एक बड़ी भयंकर समस्या है कि पड़ोसियों को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है।
बिल्कुल, एक कटु समस्या है और दोनों को ही पीछे पश्चाताप भी होता होगा,
शर्मिंदगी होती होगी थोड़ी देर के बाद कि लोग
वो समझाएंगे कि भाई चुप हो जाओ, लड़ो नहीं, तुम दोनों ही तो समझदार हो। तो देखिए क्रोध की शुरुआत मूढ़ता से होती है और इसका अंत पश्चाताप से होता है। क्रोध करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रोधी व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि में न जलता हो, उसका अंतर का विवेक जब उसका मन शांत होगा ना तो उसका अंदर का विवेक उसे धिक्कारेगा, क्यों
इन्हें ये हो रहा है कि भाई ये गलत होता गलत है हो और मुझे अपने क्रोध को जीतना है। ये बात इन्होंने
इनके अंदर इच्छा हो गई है कि हम इस क्रोध से निजात पाएं किसी भी तरह, क्योंकि घर का वातावरण तो बहुत खराब
और बच्चों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता रहता है जी। उनकी पढ़ाई भी जाती रहती है, लोग भी कॉमेंट्स करते होंगे कि तुम्हारे माता पिता ऐसे हैं, और कहीं ना कहीं उनके बाल मन पे इसका असर पड़ रहा है कि ये गुस्सा करते हैं तो हमें भी गुस्सा करना चाहिए।
बिल्कुल, ये उनके वाइब्रेशंस, क्योंकि माँ बाप के वाइब्रेशंस बच्चे जल्दी ग्रहण करते हैं, तो बिल्कुल ये संभव है कि वो भी क्रोध के वश होते जा रहे हों। वहां नहीं करेंगे तो अपने साथियों से करते होंगे, स्कूल में करेंगे, तो ये बहुत बुरी चीज है। और इनको जो इच्छा है कि क्रोध से मुक्त होना है, बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस घर में क्रोध की अग्नि जलती है वहां प्रेम और खुशी का माहौल तो रहता नहीं, और जिस घर में प्रेम और खुशी न हो वहां बच्चों की बौद्धिक विकास और उनका शारीरिक विकास दोनों ही रुक जाते हैं। हम कई तरह की निगेटिविटी को, बीमारियों को समझो निमंत्रण दे रहे हैं कि आ जाओ हमारे घर में। क्रोध स्वयं में निगेटिविटी है। मुझे याद आ रहा है एक बार कि जब मनुष्य क्रोध करता है तो उसे याद रखना चाहिए कि वो बाहर की बहुत सारी निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है। ये बहुत सूक्ष्म साइकोलॉजिकल थ्योरी हो गई, क्योंकि जब क्रोध आ रहा है तो हमारा मन एक निगेटिव एनर्जी से भर गया, खाली भी हो गया पॉजिटिव एनर्जी से और निगेटिव एनर्जी से भर गया, तो बाहर की सारी निगेटिव एनर्जी उसमें प्रवेश।
और मैंने कहीं पढ़ा था प्रताप जी कि एक बार गुस्सा करने के बाद उसका असर 72 घंटे तक हमारे मानस पटल पे और शरीर पे दोनों पे ही।
हाँ, मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं वो तो इस पे हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं कि क्रोध की तरंगों से बॉडी में क्या क्या हो जाता
पूरी
है,
नस नाड़ियां खिंच जाती हैं,
सेल्स डेड होने लगते हैं, किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है, किसी को हार्ट अटैक होने लगता है, तो इससे बचना चाहिए। पर इन्होंने इच्छा व्यक्त की है तो मैं इन्हें कहूंगा आपके शहर में जो भी नजदीक में ब्रह्मा कुमारी का सेवा केंद्र है वहां आप जाएं और राजयोग के द्वारा इस क्रोध पर विजय पाने का बहुत सरल तरीका मिलता है। मैं अपनी बड़ी बड़ी सभाओं में होता हूं, जब मैं हाथ उठवाता हूं अगर 500 लोग बैठे हैं कि किस किस ने अपने क्रोध को बहुत जीत लिया है, तो मुझे गर्व होता है कि 40% लोग हाथ उठाते हैं कि हमने अपने क्रोध को बहुत जीत लिया है। फिर मैं पूछता हूं 50% जिसने जीत लिया हो वो हाथ उठाओ, तो लगभग सब उठाते हैं, कोई थोड़े से बचते हैं 10-20 जो कहते हैं अभी हमें बहुत गुस्सा आता है। तो देखिए, राजयोग और स्पिरिचुअल नॉलेज क्रोध को समाप्त कर देती है। फिर भी जब तक ये वहां जाएं मैं इन्हें एक सुंदर सी प्रैक्टिस सिखा देता हूं। सवेरे उठ के दोनों ही बिल्कुल सवेरे थोड़ा जल्दी उठें, प्रकृति के शांत वातावरण का इफेक्ट अपने ब्रेन पर आने दें, थोड़ा खुली हवा में आ जाएं, छत पे जाएं, केवल बंद कमरे में अंदर रहना वो बहुत अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए भी, ब्रेन के विकास के लिए भी, तो थोड़ा बाहर जाएं और इस तरह विचार करें, ये जीवन कितना सुंदर है, भगवान ने ये कितना सुंदर संसार रचाया है, हम क्यों छोटी बातों में उलझ कर इसकी सुंदरता को नष्ट कर देते हैं। नहीं, हमें बहुत अच्छा इंसान बनना है, हम तो भगवान के बच्चे हैं, वो तो शांति का सागर है, मुझे भी शांत हो जाना है। तो 7 बार रोज संकल्प करें, मैं भगवान की संतान हूं, मेरा चित्त शांत हो गया है, मैं भगवान की संतान हूं, मेरा चित्त शांत है, मेरा चित्त शांत है। तो अगर 7 बार रोज ऐसे करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड इसे रिसीव करेगा और वो चित्त को शांत करेगा, चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा और क्रोध की अग्नि थोड़े दिन में बुझ जाएगी।
बिल्कुल, तो बहुत सुंदर युक्ति आपने बताई भ्राता जी, सुबह उठ करके अभ्यास करें और यदि आसपास सेवा केंद्र है ब्रह्मा कुमारी का तो वहां जाकर के योग का अभ्यास करें तो निश्चित रूप से इस पे संपूर्ण विजय प्राप्त हो जाएगी और पड़ोसियों को जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ समाप्त
हो जाएगी। वो इनके लिए अपना समय देते हैं, लेकिन साथ में मैं एक चीज और कहूंगा, क्रोध को जीतने के लिए एक चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्रोध का जन्म होता है कामना से। मनुष्य एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट करता है, भाई ये व्यक्ति मेरे सामने झूठ न बोले, ये व्यक्ति अपने काम परफेक्टली पूर्ण करे, ये व्यक्ति टाइम पर आए, ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो, ये मैंने बार बार इसको समझाया, अब ये गलती न करे, ऐसी कामनाएं मनुष्य के मन में।
और ये कामना तब बहुत बढ़ जाती है जब आपस में दो संबंधी होते हैं,
बिल्कुल
संबंधों में कामना सबसे ज्यादा,
अपनों से कामना ज्यादा। तो कामना रखना तो अच्छा है, लेकिन दूसरे के विवेक को, उसकी सिचुएशंस को भी तो हमें समझना होगा। और ये जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति हमारी कामनाओं पे हमेशा खरा ही उतरे, तो अपनी कामनाओं को भी थोड़ा सा डाउन करें, थोड़ा सा धैर्य चित्त हो। और ये याद रखेंगे, धैर्य से क्रोध को जीता जा सकता है।
बिल्कुल,
तो बहुत जल्दी इन्हें सफलता होगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ ही दिनों में इनके घरों में खुशहाली आ जाएगी।
बिल्कुल, तो एक कामनाओं को थोड़ा सा नीचे करें, और साथ ही विशेष करके जो आपने सुबह का अभ्यास बताया वो अभ्यास प्रारंभ करें। और ये चीज भी जरूर ध्यान रखें कि यदि सामने वाला क्रोध कर रहा है तो मैं थोड़ी शांति बनाए रखूं, मैं धैर्यता बनाए रखूं, मैं सहनशील हूं। वैसे भी नारी को सहनशीलता का अवतार कहा जाता है, तो यदि ये सहनशील को, धैर्यता को बनाए रखती हैं, तो मुझे लगता है कि ये आग और ज्यादा नहीं भड़केगी बल्कि शांति में तब्दील।
बिल्कुल, इनको दो चार बार दिन में ये सोच ही लेना चाहिए, मैं सहनशीलता की देवी हूँ, मेरे पास सहन करने की शक्ति है। तो इनका पति जब इनको ज्यादा कुछ बोलेगा तो कुछ तो धैर्य इनमें आ जाएगा, और कुछ देर तक तो कम से कम क्रोध को ये अवॉइड कर सकते हैं।
विचारों का वैसे भी प्रभाव तो होता ही है।
बिल्कुल, और एक और चीज होती है, मनुष्य में तुरंत रिएक्ट करने की आदत। थोड़ा भी अगर मनुष्य समझदार है तो वो जरा तुरंत रिएक्ट न करे, थोड़ा धैर्य चित्त हो तो समस्या समाप्त।
जी भ्राता जी, बहुत सुंदर बातें आज आपने कही हैं, जो भी प्रश्न हमने लिए बहुत सुंदर समाधान दिए हैं, हमारे सभी दर्शक इससे अवश्य लाभान्वित होंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, चर्चा हो रही है समस्याओं की और उसके समाधान की। आपके विभिन्न प्रकार की समस्याएं मेल के द्वारा, पत्रों के द्वारा हम तक पहुंच रहे हैं। आप अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा सकते हैं, ऐसी समस्याएं जो आपको परेशान कर रही हैं, ऐसी समस्याएं जिनसे आप दुखित हैं, जिनसे आप पीड़ित हैं। हम नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई दुख हो, कोई अशांति हो, कोई पीड़ा हो। आप इन सबसे मुक्त होकर के जीवन का संपूर्ण आनंद उठाएं, यही समाधान का लक्ष्य है। इसलिए आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य भेजें, हम हमेशा आपके प्रश्नों का स्वागत करते हैं और अपने कार्यक्रम में उन्हें शामिल भी करेंगे। आज के लिए अपने मित्र को यही इजाजत दीजिए, नमस्कार।